आदरणीय डॉक्टर हुकमचंद जी भारण के समय सार
गाथा 20 21 22 एवं कलश 21 पर प्रवचन सुनिए।
नमः समय साराय और क्या चकाते चित्त भावाय भावाय शरण भावंत।
कलश कैसे हो गया? कदमों भी वाला हुआ था। टीका दृष्टांत से समझाते हैं। जैसे कोई पुरुष ईंधन और अग्नि को मिला हुआ देखकर ऐसा झूठा विकल्प करे कि जो अग्नि है सो ईंधन है और ईंधन है सो अग्नि है, अग्नि का ईंधन है और ईंधन की अग्नि है, अग्नि का ईंधन पहले था और ईंधन की अग्नि पहले थी, अग्नि का ईंधन भविष्य में होगा और ईंधन की अग्नि भविष्य में होगी, ऐसा ईंधन में ही अग्नि का विकल्प करता है वह झूठा है, उसमें अप्रतिबुद्ध कोई पहचाना जाता है। इसी प्रकार कोई आत्मा परद्रव्य में असत्यास आत्म विकल्प करे कि मैं यह परद्रव्य हूँ, यह परद्रव्य मुझ स्वरूप है, यह मेरा परद्रव्य है, इस परद्रव्य का मैं हूँ, मेरा यह पहले था, मैं इसका पहले था, मेरा यह भविष्य में होगा, मैं इसका भविष्य में होऊंगा, ऐसे झूठों विकल्पों से पहचाना जाता है। क्या है जितनी सरल बात वो थी कि मेरे परद्रव्य हैं शरीर स्त्री पुत्र मकान जायदाद मेरे भविष्य में होंगे, पर मैं भूतकाल में थे और मैं इनका था, ये मेरे ईंधन की अग्नि है, ऐसा उदाहरण देकर के उनने कौन सी सरलता की है, ऐसी कहके भी उनकी आलोचना नहीं करना चाहता हूँ, ऐसा कहके मैं ये कहना चाहता हूँ कि इसमें वो कहना क्या चाहते हैं, क्योंकि इसमें तो कुछ समझाने को कुछ दिखता ही नहीं है कि तीन काल की अपेक्षा परद्रव्य को अपना माने और परद्रव्य मैं हूँ ऐसा माने अथवा मेरा है ऐसा माने अथवा मैं परद्रव्य का हूँ और परद्रव्य मैं हूँ ऐसा माने, चार बातें हैं तीन काल की अपेक्षा है। लेकिन अग्नि और ईंधन का उदाहरण देकर ये कहना चाहते हैं वो कि अग्नि और ईंधन में तो दाह्य दाह संबंध है, मैंने वास्तव में तो परस्पर विरुद्ध है, दोनों एक का काम है जलाना और एक का काम है जलना, तो जिनमें दाह्य दाह संबंध हो उन दोनों को हम एक मान लें अथवा उसको उसका मान लें ये तो अच्छी बात नहीं है, लोगों भी ठीक नहीं है, माने दो आदमियों में ये संबंध पिटने वाला और पीटने वाला ये संबंध तो है ही ना, एक पिटने वाला है एक पीटने वाला, अपन बोलते ना इसने मुझे मारा तो उसमें अपन कहेंगे हिंस हिंसक संबंध, तो ये भी कोई संबंध है, कोई कहेगा मेरा ऐसे संबंध है रिश्तेदारी है क्या कहिए मुझे पीटता है मैं इससे पीटता हूँ, मैंने जो ऐसा परस्पर विरुद्ध लोक में भी जो संबंध नहीं स्वीकारा जाता है, दाई दाह ईंधन का काम जलने का और अग्नि का काम जलाने का, तो जो ईंधन को जलाए वो ईंधन उस अग्नि को अपना माने इतना की बात नहीं, ऐसे ये कहते हैं हरेक का लगाओ अपन कि पहला तो मोटा तो ये है कि हमारा इस सारे ही पर पदार्थों से गिरे गया एक संबंध है, वे हमारे गे हैं और हम उनके जानने वाले हैं, तो जो हमारे गे हैं उसको अपना मानने लग जाए गलत है, अब एक एक का अलग लगाओ कर्म और नो कर्म है, कर्म में और नो कर्म और भाव कर्म, कर्म का और आत्मा का एक तरह से बद्ध घातक संबंध है, कर्म के वजह से जीव को विकास होता है, तो कर्म घातक है घातिया कर्म बोलते भी है और आत्मा उसका बद्ध है, जैसे ईंधन की घातक अग्नि है ऐसे ही कर्म का भाव कर्म का और द्रव्य कर्म का संबंध लीजिए, तो कदाचित नो कर्म कर्म का हम गे गाय संबंध में रखे तो कर्म कम में नो कम मम्मी है ना, तो कर्म का आत्मा के साथ बद्ध घातक संबंध है, ऐसा ईंधन का अग्नि के साथ, अग्नि का ईंधन है बद्ध और अग्नि है घातक, तो जैसे ईंधन कोई अग्नि कहना अथवा ईंधन की अग्नि कहना अथवा अग्नि का ईंधन कहना जैसे ये अनुचित है, वैसे ही देह को अपना कहना, कर्म को अपना कहना, भाव कर्म को अपना कहना, देह मैंने नो कर्म, ये भी वैसा ही अनुचित है। एक तो ईंधन और अग्नि के उदाहरण से ये बात समझ में, दूसरी ये बात है एक एंगल हुआ है बद्ध घातक का, और दूसरा एंगल ये है कि लोक में ईंधन को अग्नि का कहा जाता है, जैसे बोलते कंडे की अग्नि, लकड़ी की अग्नि, कोयले की अग्नि, गैस की अग्नि, स्टोव की अग्नि, ऐसे अपनी तरह तरह की अग्नि होगी ना, तो ये तो अग्नि की होती है, लेकिन ये दाही कृत भेद हुआ, दाही माने तो जिसे जलाया जा रहा है उसकी अपेक्षा से दहन में अग्नि का भेद डाला, दाही कृत असदता अग्नि के नहीं होती है। मान लीजिए, मान क्या लीजिए है ही, बहुत से हमारे त्यागी वृत्ति लोग कंडे की अग्नि की का भोजन नहीं खाते, खासकर बात ये कंडे में सिकती है ना, वे नहीं खाते, क्यों कि ये तो मल है गाय का, स्पष्ट ही है, उसमें कोई ऐसी बात नहीं है, होने पर भी न मालूम क्यों हम जैनियों में भी उसके प्रति मेरी घृणा नहीं है। देखो कि बकरी की उसके का यूज करते हैं, घोड़े की लीद का यूज करते हैं, डराने में करते कि नहीं करते हैं, और गाय भैंस का करते हैं, इसका इसका असर तो हमारे पास हिंदू संस्कृति का असर है हमारे, क्योंकि हिंदू संस्कृति में तो उसे परम पवित्र माना है, पंच गव्य पंच अमृत करके माना है उसको, आयुर्वेदिक तो सारी दवाइयां गौमूत्र में बनती है, सारी दवाइयां के जो शोधन होता है ना होता है, तो उस वजह से उन्हीं के बीच में रहते रहते समझ ले कि हमारे घर में 25 घर हों और 25वीं जैसे पानी से नहा के शुद्ध होते हैं ना, कपड़ा पानी से धोते हैं तो घर अपवित्र हो जाता है, तो गोबर से लीप के शुद्ध करते हैं, आपके महाराज से भी बताया कि बच्चे लेटन करते हैं ना तो लेकर माता नाना भी करके और वो गोबर से लोग देती है, तो एक लेटन हटाई होती है, लेटन सर्दी वो तो घर ही सारे घर को पोत लिया उसने। अब ऐसे संस्कार में उसके प्रति हमको कोई घृणा रही नहीं, परिवारों में कहीं किसी प्रकार की कुछ घृणा रहती नहीं, तो ये वो गोबर जो घर में हमारा लिपा है उसकी अपेक्षा तो अग्नि गोबर की तो बिल्कुल शुद्ध है, वो तो जल ही गया, वो तो पर्याय पलट जाती, पर्याय पलटने से तो पता हो चीजें पर जाती हैं, फिर तो खेत में जाकर किसका क्या नहीं होता है, क्यों जब वो जल के अग्नि से तो सब तीर तो कंडे की जो राख होती है उस राख से तो हमारे घर के बर्तन साफ किए जाते हैं, अब वो कोई गलत नहीं है, वो तो राख है, वो कंडे से क्या मतलब है, लकड़ी के और कोयले की राख कितनी मिलती है, कहाँ मिलती है, किसको मिलती है, राख तो असली उसकी होती है, और वो इसलिए पवित्र है कि एक तो वो जल गई और एकदम कीटाणु रहित है, तब अग्नि से जली हुई है उसमें कोई कीटाणु का दोष नहीं है, लेकिन थाली माली मारने से उसमें कीटाणु लग जाए और उसको वो पकड़ के उसकी एकदम चिकनाई को, तो वो रूखी है चिकनाई को बिल्कुल पहुंच लेती है बर्तन को, लेकिन वो उनका ये कहना है जो लोग नहीं खाते हैं कि वो आधा कंडा जला रहता, आधा पूरा थोड़ी जल जाता, पूरा जल के बिल्कुल अंगार हो जाए, फिर उसमें बातियां रखने में इतनी हमको दोष और हानि नहीं है, लेकिन वो अंगार नहीं होते हैं, कई किसने कुछ तो कंधा रह जाता है ना, तो वो कहते हैं कि वो उससे फिर वो हमको दोष मानते हैं, जो लोग कहना है उस तरह को बता रहा हूँ, तो वो कंधे नीचे जलते और ऊपर से तवा पर रोटी बनाते उसको कोई ऐतराज नहीं करते, उसमें भी ऐसा होता है वो रोटी को नीचे लग पटक कर भी सेकते हैं, कंधे की पूरी तो बना लेंगे, रोटी तो नीचे इस कंधे के ऊपर ही सेकते हैं, हालांकि जब तक कंधा जलाता नहीं तो धुआं देता है उससे खराब होती है, लेकिन फिर भी उससे उसकी बहुत सी बातें हैं। मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि वो ईंधन और अग्नि तो उनमें एक तो बद्ध घातक दोष बताया और दूसरा वो ये कह रहे हैं कि वो मैल है और अग्नि पवित्र है, अग्नि को पवित्र करने वाला माना जाता है और गोबर को अपवित्र वस्तु माना जाता है, भगवान आत्मा अति निर्मल है और राग गोबर जैसा अपवित्र है, मैल है, तो एक तो बद्ध घातक है कौन प्रक्षेप लक्ष्य पीतल में लाख के समान, ये निर्मलता और मलिनता का संबंध है, ये दोनों परस्पर विरुद्ध हैं। और तीसरा कि गे गे गाय संबंध है, कि जैसे हम पर पदार्थ को यही उदाहरण दिया ना, जैसे दाह कृत अशुद्धता नहीं है ईंधन को, ऐसे ही भगवान आत्मा को गे कृत अशुद्धता नहीं है। ऐसा लिखा ना, अग्नि को दाही कृत अशुद्धता नहीं होती है, मतलब जो ईंधन जलाया गया है ईंधन में जो अपवित्रता है उस ईंधन की, उस अग्नि में वो अपवित्रता नहीं रहती। ऐसे ही तो अर्थ हुआ ना कि ईंधन को दाही कृत अपवित्रता नहीं है, अशुद्धता नहीं है। इसलिए कंडे की अग्नि हो वास्तव में, वो अग्नि हो गई हो तो अपवित्रता उसमें रही नहीं, तो अग्नि नहीं हुई तब तक ही अपवित्रता होती है। ऐसे कहते हैं गे कृत अशुद्धता, ज्ञान ज्ञान रूप रहे तो उसमें गे कृत अशुद्धता नहीं होती। ज्ञान ज्ञान के इनको कर्म नो कर्म और भाव कर्म, ये तीनों आत्मा के गे थे, तो इनको गे नहीं मानकर अपना माना तो स्वस्वामी संबंध बना लिया, और मैं ही हूं तो अपना एकत्व बुद्धि होगी, संबंधी की बात नहीं रही। और मैं इनका करता हूं तो कर्ता कर्म संबंध हो गया, भोगता हूं तो भोग भोग संबंध हो गया। तो इस ज्ञाता के संबंध को तोड़कर और संबंध बनाते हैं, ये मिथ्या। ऐसे कहते हैं ईंधन की अग्नि नहीं है और अग्नि का ईंधन नहीं है, ईंधन अग्नि नहीं है और अग्नि ईंधन नहीं है। लेकिन लोक में, चौथी बात है, लोक में ईंधन की अग्नि कही जाती है, ये व्यवहार कथन है। क्यों कही जाती है? वो उसने था बनारसीदास आर में आदि की अग्नि ऐसा कहा जाता ना, क्योंकि एक तो अग्नि ईंधनाकार होती है, ईंधनाकार समझ में आई ना, बोलो एक डंडा है इतना उसे जलाया तो अग्नि भी ऐसे डंडा डंडा रूप हो जाएगी, डंडा जलाया तो कंडे के आकार हो जाएगी। ऐसे ही ज्ञान गे आकार होता है, गेहों के आकार को जानता है, वो ज्ञान की प्रजा उस गे के रूप में परिणत होती है। इसलिए भी अग्नि को ईंधन को अग्नि का और अग्नि को ईंधन का कहा जाता है। दूसरी ये कि उसके बिना व्यवहार नहीं चलता, कैसे? जैसे वैद्य ने बताया कि इस दवाई को कंडे के अग्नि में काढ़ा बना करके पीना, ऐसा बताते हैं वैद्य आपको मालूम जो, इससे क्या मतलब है? कंडे की अग्नि ऐसा क्यों बोलते हैं? इस पर भी आपको ख्याल है, इसलिए बोलते हैं कंडे की अग्नि में बहुत तेजी नहीं होती है जो लकड़ी की अग्नि और कोयले की में होती है, इसलिए बोलते मंदी आंच में। कोई वैद्य तो ऐसा कहेंगे कि मंदी आंच में इसको बनाना, अब कोई ऐसा कहेंगे कंडे की आंच में बनाना, दोनों का एक ही अर्थ। क्यों होता है ऐसा? कंडे का ऐसा स्वभाव है कि फटाफट उसके ऊपर की हवा लगते ही तो वो राख बन जाती है, और वो राख ऊपर के ऊपर दब जाती है और नीचे आग बनी रहती, तो वो राख बीच में जो पड़त पड़त रह गया ना, तो उतनी वो तेज रोटी को जलाने में नहीं आएगी, रोटी जलेगी नहीं, उससे जाएगी अंदर से, मतलब जलेगी नहीं उससे जाएगी, और जो तेज आग में होती है ऊपर ऊपर जल जाती है और अंदर कच्ची रह जाती है। तो मंदी बात यह है वो कंडे की आग सेकी इसलिए जाती है क्योंकि वो आप कोयले की आग को उस पर सेकोगे तो क्या है कि ऊपर ऊपर तो एकदम काली पड़ जाएगी और अंदर कच्ची पड़ी रहेगी, और कंडे की अग्नि में वो धीरे धीरे सेकेगी तो अंदर तक वो सिकती है और ऊपर भी उसमें दाग नहीं पड़ता है। ये है तो मंदी आँच में कारे का ऐसा फटाफट एकदम तेज आँच में लगाओगे तो वो पानी उड़ जाएगा उसका, लेकिन वो आध घंटा तक उसमें पानी में खोलते रहे वो दवाइयां जड़ी बूटियां तो उसका जो वो सत निकलेगा वो दो मिनट में पानी उड़ा देने से सत नहीं निकलेगा, इसलिए वो कार्य को मंदी आंच में चलाने के लिए वैद्य लोग कहते हैं। तो इसलिए ये वैद्यों को तो जरूरी हो गया ना व्यवहार चलाने के लिए कि उस मंदी आंच को कंडे की आंच कहें, तो वो मंदी में तेज में वो क्या समझेगा कौन बनाने वाला, मंदी आंच है तो मंदी आंच कैसे मंदी करे, तो ना कंडे की जलाओगे तो मंदी होगी और उसकी जलाओगे तो लकड़ी की जलाओगे तो तेज होगी। तो इसलिए उन्हें कंडे की अग्नि, लकड़ी की अग्नि, कोयले की अग्नि, ऐसे अग्नि के भेद करना पड़ते हैं व्यवहार के लिए, क्योंकि नहीं तो कैसे भेद कर बताए। ऐसे ही ज्ञानी जनों को गे की तरफ से ज्ञान के ऐसे भेद करने पड़ते हैं कि जैसे अपन कहते हैं कि बकालात का ज्ञान, तो ज्ञान तो आत्मा का है, वकालत का नहीं होता है, कानून का नहीं होता है। हम कहें डॉक्टरी का ज्ञान, दवाइयों का ज्ञान नहीं, ज्ञान तो आत्मा का होता है। लेकिन ये ज्ञान किसको गे बना रहा है ये व्यवहार के संचालन के लिए कि उसका ज्ञान कैसा व्यवहार लोक में है। तो इसलिए आत्मा क्योंकि ज्ञान स्वरूप है तो हम कह सकते हैं इसको कि कर्म का ज्ञान, नो कर्म का ज्ञान, द्रव्य कर्म का ज्ञान, भाव कर्म का ज्ञान, राग देश का ज्ञान। तो कोई राग देश और कर्म का ज्ञान नहीं समझ लेगा, ज्ञान तो आत्मी का है। तो ऐसे ही का माने आत्म ईंधन का अग्नि, अग्नि की ईंधन, ईंधन का अग्नि, ऐसा व्यवहार होता है। ऐसे ही जिनको जाना जाता है उनका ज्ञान का व्यवहार लोक में होता है ना। तो उस व्यवहार को कहना विधि बात है और उनको अपना मान लेना वो अच्छा। ऐसे ही कर्म मेरे, राग मेरा, ये कौन सी ऐसी आवश्यकता है कि जो इस व्यवहार की जरूरत है बता सकते हो? फिर आपको मेरा कहने के लिए यदि नहीं कहें तो कौन सी दिक्कत खड़ी है? शरीर को मेरा नहीं कहें तो कौन सी दिक्कत खड़ी है? कौन सा, जैसे बताया ना कि वो अग्नि को कंडे की अग्नि और उसकी अग्नि कहने का भेद इसलिए डालना जरूरी है कि जो वैद्य को ये बताना है कि मंदी आंच में सेंकना तो उसकी प्रयोजन का पूर्ति नहीं होती है। तो उसके तो व्यवहार का ये प्रयोजन रहा योगेश। अब आचार्यों को देह को अपना कहा, राग को अपना कहा, स्त्री पुत्र को अपना कहा और ज्ञानवानादि कर्म को अपना कहा, तो इसमें ऐसे कौन से व्यवहार की हानि हो रही है कि इन्हें अपना नहीं कहें? तो ठीक ही रहता है। विष्णु लाल जी क्यों तुम्हारे समझ में आया नहीं? बताओ क्या है? वो तो वो व्यवहार निश्चय की बात के व्यवधान है, वैसे उसी के नजदीक ही है, कोई ऐसी बात नहीं है। बात तो वही है लेकिन वो नहीं है यहाँ। देखो राग अपना नहीं, तो जैसे तुम्हारा राग है ना वो भी मेरा नहीं हो, मेरा राग भी मेरा नहीं, तो तुम्हारा पुत्र भी मेरा पुत्र नहीं हो, मेरा पुत्र भी मेरा नहीं, दोनों ही मेरे नहीं। तो मेरे पुत्र को मेरा पुत्र कहने का व्यवहार क्यों है और दूसरे के पुत्र को अपना पुत्र कहने का व्यवहार क्यों नहीं है? परद्रव्यत्व की अपेक्षा तो दोनों ही पर है ना, मेरा पुत्र भी और जो आपका पुत्र है वो दोनों ही मेरे पुत्र नहीं है। लेकिन मेरे पुत्र को व्यवहार से मेरा पुत्र है और निश्चय से नहीं है, और तुम्हारा पुत्र ना मेरा निश्चय से है ना मेरा व्यवहार से है, ये फर्क क्यों? दो पर एक से है ना, तुम्हारा राग ना वो मेरा निश्चय से है ना मेरा व्यवहार से है, और मेरा राग व्यवहार से मेरा है और निश्चय से मेरा नहीं है। तो मेरे राग को व्यवहार से मेरा है इसका क्या प्रॉब्लम? क्योंकि उस राग के कारण मुझे कर्म का बंध होता है, तुम्हारे राग के कारण मुझे कर्म का बंध नहीं होता है, इसलिए ये व्यवहार की सिद्धि है। नहीं तो कोई न्याय नहीं रहेगा, कहीं भी राग हो उसके कारण किसी को भी बंद हो जाएगा। यदि वो किसी भी नए से राग मेरा नहीं होगा तो बागमल जी ये तर्क समझ में आ गया कि नहीं? तो मेरे राग के अनुपात में मेरे को बंद क्यों हो? तो मैं राग हो रहा मुझे बंद हो जा। ऐसे ही ये मेरी देह और ये तुम्हारे, दोनों की देह जुदी है, लेकिन तुम्हारे सिर में डंडा पड़ता है तो मुझे दर्द नहीं होता है और मेरे सिर में डंडा पड़ता है तो मुझे दर्द होता है। ऐसा जो अंतर है ये कौन न्याय से करोगे? ये अंतर तो है ना, तो ये अंतर नहीं रहेगा, इस अंतर को तो व्यवहार में ही बताएगा ना। ये फैक्ट तो है ना, शरीर तो अपना नहीं है, ये तो बहुत पक्की बात है, इसमें तो कोई शंका की बात नहीं है। तो मेरा शरीर भी अपना मेरा नहीं और तुम्हारा भी मेरा नहीं, लेकिन जब तुम्हारे सिर में दर्द होता है तो मेरे को तकलीफ नहीं होती, मेरे सिर में होता है तो मुझे होती है। तो ये मेरे और तेरे का ये व्यवहार का हेतु है, कितना हेतु है वो। इसे मेरा कर्म, मेरा नो कर्म, ये देह का हो गया उदाहरण नो कर्म का। ऐसे ज्ञानवर्णादि कर्म, मेरे ज्ञानवर्णादि कर्म के उदाहरण में मेरे को अज्ञान होता है, तुम्हारे ज्ञानवर्णादि कर्म के उदाहरण में मेरे को अज्ञान नहीं होता है। तो इतना संबंध भी जो है उसको बताने वाला तो कोई होना चाहिए ना, ये व्यवहार इसलिए बताते हैं। अब दूसरी बात रही कि फिर निषेध क्यों करते हैं? निषेध इसलिए करते हैं कि ये कोई आज तक कहता कि मिला कि वो उनका बेटा है वो तुम्हारा बेटा नहीं है, ऐसा कोई कहना नहीं मिला क्यों? कि वो जो तो दूसरों की औरत है वो तुम्हारी औरत नहीं है, ऐसा कहने वाला आज तक कोई मिला? क्योंकि कोई मानता ही नहीं दूसरे को बेटे को, ना निश्चय से अपना माने ना व्यवहार से अपना माने, दूसरे की औरत को ना निश्चय से अपना माने ना व्यवहार से माने, दूसरे के शरीर को ना निश्चय से माने ना व्यवहार से माने, कोई प्रॉब्लम ही नहीं आई तो उसे निषेध करने की समस्या कहां से आई? मैं तो ऐसा बोलता हूँ कि कश्मीर हमारा है, कश्मीर हमारा है, ऐसा बोलते, ऐसे कहीं बोलते दिल्ली हमारी है, कि दिल्ली ने संशय नहीं हुई आज तक किसी को, कश्मीर में शंका होती है तो बार बार बोलते हैं कि हमारा है। ऐसे पर इसमें अपना ही नहीं हुआ तो उसको निषेध करने की जरूरत ही कहां रही। व्यवहार का तो निषेध करें ना, तो पर में तो अपनत्व का व्यवहार ही नहीं है। हमने पर के दो हिस्से कर रखे हैं, एक पर को हम पर मानते हैं, एक पर को हम स्व मानते हैं। अथवा शास्त्र में भी भगवान ने दो हिस्से कर दिए, जो एक तो जो व्यवहार से अपना है ऐसा पर, और एक जो निश्चय व्यवहार दोनों से भी अपना नहीं है ऐसा पर। तो जो व्यवहार से अपना है उस व्यवहार को निश्चय निषेध करेगा। क्यों? जो व्यवहार से ही अपना नहीं है उसका निषेध निश्चय काय को करेगा। अपने देख ऑटो रिक्शा में यहाँ पर लाते हैं वहां से यूनिवर्सिटी से, और फिर अपनी गाड़ी में चले जाते रिक्शा मिल जाए तो अपन 2 रुपया दे देते दे नहीं दे देते दे। तब वहां से यहाँ तक लाया तो पेट्रोल जल गया इतना ठीक है। अपन तो रिक्शा में बैठे कूद गए और गाड़ी में उतर के बैठ गए तो काय के 2 रुपये दिए। क्या भगवानी बाबू जी आप मेरे के में बैठ गए, तो बैठ गए तो तेरा क्या नहीं तो क्या उतरे जाते हैं। अब बैठ गए तो मेरा गोनी कहते हैं मैंने वो इतना बैठे का पाप लगता तो उसका 2 रुपये दंड होता कि नहीं होता बोलो। अब बैठ गए तो अब तुम उसमें से सूखे नहीं उतर सकते हो। उसने एक कदम भी नहीं चलाया लेकिन उसे उतना तो अब बैठेगा दोष है ना। ऐसे ही जो किसी भी अपेक्षा अपना हो गया तो उसका निषेध करे। अब ऐसे ऐसे 2 रिक्शे वाले ने अपने से मांगे अपन ने दिए और 10 रिक्शे वाले और खड़े और वे अपने से मांगे बाबू मुझे तो क्या कहा नहीं उससे अपन बचते हैं और देते हैं देते कि नहीं देते नहीं दे तो भी थोड़ा अंदर से फीलिंग करते हैं कि भाई ये गड़बड़ हुई देना चाहिए करते कि नहीं करते बोलो। लेकिन बाकी 10 रिक्शों में उनसे हमारा कोई मतलब ही नहीं क्योंकि हमने उनसे बात ही नहीं करी, हमने उनके रिक्शे में बैठा ही नहीं, हमने उसे छुआ ही नहीं, इसलिए उनको क्या मतलब। तो जो परदृश्य ना निश्चय व्यवहार किसी अपेक्षा भी हमसे छुआ ही नहीं उसके निषेध निश्चय काय को करे। इसलिए कर्म में और नो कर्म में और न द्रव्य कर्म में व्यवहार से भी अपने हैं तो निश्चय से उनका निषेध। तो वो कहते हैं अग्नि ईंधन का ईंधन अग्नि की है, तो जिस अग्नि ने जिस ईंधन को जलाया उसी अग्नि का तो वो ईंधन है कि दुनिया भर का कोयला इस अग्नि का ईंधन है, दुनिया भर का तो नहीं है ना। तो इसलिए कहते वो अग्नि में वो दाई दाग संबंध जितना हुआ तो जैसे जो हमने गे जाना उसको अपना कहने का लोक में व्यवहार है, ऐसे दाही को भी अग्नि कहने का व्यवहार है। दाई को अग्नि कहने का व्यवहार है तो लोग उस व्यवहार में मुग्ध हो जाते हैं तो दाई को अग्नि मान लेते हैं, ईंधन को दाई माने ईंधन को अग्नि मान लेते हैं। इसलिए दृढ़ता से समझाने की जरूरत है कि अग्नि ईंधन नहीं है, वह ईंधन ईंधन अग्नि नहीं था तो अग्नि ईंधन नहीं थी और ईंधन अग्नि भविष्य में नहीं होगी और अग्नि ईंधन भविष्य में नहीं होगी। 3 काल क्यों कही कि अभी तो नहीं है ईंधन अग्नि लेकिन कल तो हो जाएगा, ये जो हमने कोयला अपने घर में लाके रखा है ना अभी तो ईंधन है लेकिन जब कल जलेगा तब तो ईंधन अग्नि हो जाएगी ना। कोई ऐसा न मान ले इसलिए कहते भविष्य में अनंत काल तक ईंधन ईंधन रहेगा और अग्नि अग्नि रहेगी। ईंधन अग्नि नहीं रहा हुआ है तो अग्नि अग्नि हुई है तो ईंधन ईंधन रहा है ऐसा। ऐसे ज्ञान ज्ञान रहा है और गे रहा है, भगवान आत्मा रहा है, कर्म नो कर्म हो ये सब इससे जुड़े रहे हैं। ये उद्देश्य यहाँ दिखाना है। इस पॉइंट से इन्होंने अग्नि और ईंधन का उदाहरण दिया है। ये नेगेटिव उदाहरण था, अब पॉजिटिव उदाहरण देते हैं किसी को। और अग्नि है वह ईंधन नहीं है, ईंधन है वह अग्नि नहीं है। अग्नि ऊपर तो था कि ईंधन है वो अग्नि है ऐसा था ना, जो अग्नि है तो ईंधन है और ईंधन है तो अग्नि है ऐसा था। और नीचे है नहीं वाला देखो पूरा उल्टा है, ईंधन है वह अग्नि ही ईंधन ही है, अग्नि का ईंधन नहीं ईंधन की अग्नि नहीं, अग्नि की अग्नि है ईंधन का ईंधन है, अग्नि का ईंधन पहले नहीं था ईंधन की अग्नि पहले नहीं थी, अग्नि की अग्नि पहले थी ईंधन का ईंधन पहले था, अग्नि का ईंधन भविष्य में नहीं होगा ईंधन की अग्नि भविष्य में नहीं होगी, अग्नि की अग्नि भविष्य में होगी ईंधन का ईंधन भविष्य में होगा। कभी कभी लोगों को पागल पन जाना लगता है क्या कह रहा है ईंधन की जाता है 10-15 कलई की कलई है इसे तिबंदा गाथाएं आती हैं तो लोगों को लगता है कि ये क्या इनको तो रिपीटेशन का दोष तो लगता नहीं था क्योंकि इन्हें तत्व ज्ञान कहना है, इन्हें कोई कविता नहीं बनानी है, इनको कोई भजन नहीं करनी है, इन्हें कोई भक्ति नहीं करनी है, वो तो सब पर घटित करके बता देते हैं। जैसे नहीं है ईंधन नहीं है, जैसे खाने का नहीं है, पान का नहीं है, ये का नहीं है, कर्म का नहीं है, नो कर्म का नहीं है, ऐसे ऐसे गड़बड़ लगाते लगाते चले जाते हैं। और कल ये सफेद करती है दीवार को, ऐसा ऐसा करता है, एक ऐसे बराबर बराबर बराबर। इसलिए वो साधारण लोगों को कह रहे थे कैसे बच्चों की बात है, कह रहे क्या का प्रचन का बात, जो हुई है सो जाएगा। कुछ ऐसे लड़ने लगते हैं कि नहीं है तो ठीक है, बिना ईंधन के जला लो तुम रोटी बना लो, तुम ऐसा कर दो ऐसा बता, बिना ईंधन की आग जला लो, जलाने इस बात में लड़ने लगते हैं। इस प्रकार जैसे किसी को अग्नि में ही सत्यार्थ अग्नि का विकल्प हो तो वह प्रतिबद्ध का लक्षण है, असली अग्नि में अग्नि का विकल्प हो तो वो अज्ञानी का। क्या लिखा बात, अग्नि में ही सत्यार्थ अग्नि का विकल्प हो तो प्रतिबुद्ध का लक्षण है, माने उससे प्रतिबुद्धता पहचानी जाएगी। ऐसा विकल्प हो ये अग्नि है अग्नि में तो ये समझदार है, ऐसा जाना जाता उस विकल्प वो लक्षण है। इसी प्रकार मैं परद्रव्य नहीं हूँ, परद्रव्य मुझ स्वरूप नहीं है, मैं तो मैं ही हूँ, परद्रव्य है वह परद्रव्य ही है, मेरा यह परद्रव्य नहीं है, इस परद्रव्य का मैं नहीं हूँ, मेरा ही मैं हूँ, परद्रव्य का परद्रव्य है, यह परद्रव्य मेरा पहले नहीं था, यह परद्रव्य का मैं पहले नहीं था, मेरा ही मैं पहले था, परद्रव्य का परद्रव्य पहले था, यह परद्रव्य मेरा भविष्य में नहीं होगा, इसका मैं भविष्य में नहीं होऊंगा, मैं अपना ही भविष्य में होऊंगा, इसका यह परद्रव्य भविष्य में होगा, ऐसा जो सद्रव्य में सत्यार्थ का आत्म विकल्प होता है वही प्रतिबद्ध का लक्षण है, इससे ज्ञानी पहचाना जाता है। अब हम तीन कहते ना, तीन काल में नहीं होगा खत्म, पहले अब हर एक को आचार्य कहते क्या करे जिंदगी भर करेगा क्या, होंगे ना सामने भेद विज्ञान की बात आती है। तो एक मिनट बता, तीन काल में अग्नि का ईंधन था, ईंधन अग्नि थी, तीन काल में भगवान आत्मा पर का निशान है। तो ये जो समय बचा करके फिर करना क्या है, विषय कैसा है मैंने था, आचार्य तो कहते हैं रोजाना विचार करो मैं पर का नहीं, मैं पर का नहीं, पर मेरा नहीं, ये तो ये तीन काल की दृष्टि से बदला है। तुम तो एक ही बात परद्रव्य मेरा नहीं, मैं परद्रव्य का नहीं, इसको ही एक लाख दफे बोल ये मेरा नहीं, ये मेरा नहीं, ये मेरा नहीं, मैं तो भगवान आत्मा हूँ, ऐसा अजपा जाप अंदर में चले तो ये मैं नहीं हूँ, ये मैं हूँ, ऐसा इसको ख्याल बने। वास्तव में धर्म की तो मेरी समस्या ही है, हमको भी तीन काल की बात आती है, दो गाथा में आती है तो इसमें कंटाला छूटता है, इसका मतलब है कि मनुष्य हमारा ऐसे जाने वाला है। क्यों, इस जीवन भर रटने का बात, मैंने दाल रोटी एक कौर रोटी का खा रहे तो मुझे बुरी लाओ, ये नहीं लाओ, ये मगोरी लाओ, ये लाओ, ये लाओ, ये लाओ, इसकी जिंदगी कैसी कटे, रोटी दोनों टाइम जिंदगी में खा दी है, एक कौर जैसे दूसरा कौर से नहीं खटता, और जिंदगी में जो खानी हो तो उसका क्या होगा। ऐसे अपने भगवान आत्मा में आत्म विकल्प अनंत काल तक करना है, इस सिद्ध होकर इसकी क्या दुर्दशा होगी, क्यों तो वहां भी तो अपने त्रिकाली ध्रुव में ही अपना रहे ना, रहना है ना, इसको तो जायका बदलना है, कभी इसको अपना बनाना, कभी इसको अपना बनाना, अरे अभी समझ अब चलो ना आगे हो गई ना, ईंधन का ईंधन का नहीं पता सर होगी छह दर्द उन्होंने लिखी छह दर्द तुमने कहीं समझाइए सर पड़ी सर समझाइए सर पड़ी। ये तो हम अंदर की एक चीज है ना कि जब तक तेरा उपयोग और श्रद्धा और ध्यान तीनों इस रूप पर में इतना हो जाए तब तक ये करना, ऐसा लिखा है समय सारे ज्ञान का ज्ञानम ज्ञाने प्रतिष्ठति अवचिन्न धारा, अवचिन्न धारा से इस भेद विज्ञान की धारा को ये मैं नहीं हूं और ये मैं हूं अवचिन्न रूप से तब तक बहा तब तक ज्ञान ज्ञान में प्रतिष्ठित ना हो जाए। सुबह समझाया था कि वो विकल्प तो हट जाए और वो ज्ञान रह जाए, ऐसा ज्ञान त्रिकाली ध्रुव को जानता हुआ रह जाए, निर्विकल्प बने श्रद्धा निर्भक पर बने जानता रह जाता है, तब तक ये मैं नहीं हूं और ये मैं हूं ये करना है। बोलो सच्ची बोलो तो नमोकार मंत्र से बड़ा महामंत्र है, नमोकार मंत्र है क्या तो पांच परमेश जो फर्क है उनके स्मरण की बात है, उनके स्वरूप के विचार की बात है, उनके चिंतन मनन की बात है, पापी से बचने की बात है, पुण्य की बात है, उसमें तो धर्म कभी तीन काल में होने वाला नहीं है। पंच परमेश जो फर्क है उनका ज्ञान भी होगा ना, तो विकल्पात्मक होने से बंध के कारण बनेगा। ये तो अपने भगवान आत्मा में एक तो पर है और दूसरी वे पर्याय है, दोनों की आशा से धर्म नहीं होना है तो महामंत्र कैसे हो सकता है। महामंत्र तो ये है, क्यों समझे ना, समझना कहना नहीं कहीं फिट के आओ मैं जिम्मेवार नहीं, जो तर्क है एक सी है इससे आप समझ रहे कि वो अपने ज्ञान का गेय बनेगा तो भी राग होने वाला है बंध होने वाला है, इसलिए कि पर है और दूसरी पर्याय है। न पर के आशा से संबंध में ज्ञान प्राप्ति उत्पत्ति होती है, वृद्धि नहीं होती है, और न पर्याय के आश्रय से होती है। सत्यकाली से जो भगवान आत्मा है उसके ज्ञान से और उसमें ही अपनेपन से और उसके ध्यान से होने वाला है मोक्ष, बिल्कुल बिल्कुल संत प्रसन्न की बात है। ये तो महामंत्र इसलिए है चूमंत्रकारी बलाकाली और मंत्र है और ये अनाप शनाप जो है, मैं तो बोलता हूँ वो कार मंत्र की महिमा इसमें है। सबसे पहले कि उसमें किसी प्रकार का भिखारापन नहीं, सबसे पहले मानता उसकी कोई मांग नहीं है, नहीं था छिंदे फिंदे 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 छिंदे फिंदे, ये सबसे नकली मंत्र है। इसका नाथ उसका नाथ उसका इसको छिंद उसको भिंद आ रहे हैं, भूतम सिंधे बिंदे मारी सिंधे बिंदे डाकनी सिंधे बिंदे सांकनी सिंधे बिंदे आता है ना, उसमें पढ़ा कहीं पढ़ा आपने, वो बड़ा शांति मंत्र कहलाता है, बड़ा शांति मंत्र, अशांति मंत्र कौन सा है, साफ किया था इसको छिंदे बिंदे उसको छिंदे बिंदे उसको छिंदे बिंदे, किसी ने तेरा कुछ लिया नहीं लेना नहीं देना नहीं जगत में कोई चक्कर नहीं, भूतम चौरम मारियम क्या 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 लिखा है, रोगम मृत्युम क्या क्या मैंने भूल गया, पहले बहुत करी वो धारा बहुत करी, हाथ दर्द होने लगता था धारा करते 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 भरम बनानी भरम बनाना भरम जिसने गलत सुंदर भिंदे सुंदर भिंदे ही है, सुंदर भिंदे में तोड़ फोड़ तोड़ फोड़ तोड़ फोड़ तोड़ सुंदर सुंदर भिंदे भिंदे मैंने क्या छेद डालो छेद डालो भेद दो छेद दो भेद दो छेद दो भेद दो छेद दो भेद दो मारकाट मारकाट कसाई कैसी दुकान जैसा काम है। भगवान आत्मा में कहा किसको मारना किसको काटना, नमोकार मंत्री सबसे बड़ी महानता इस बात में है कि उसमें कोई मांगनी नहीं है, किसी के विरुद्ध कुछ नहीं है, विशुद्ध जो परम वीतरागी पंच परमेश्वरी हैं उनको बिल्कुल पवित्र भाव से स्मरण मात्र है, नमस्कार किया है, ये उसकी महानता है। एक बात भिखारापन नहीं है, दूसरा ये कि वो कुछ करता नहीं है, कुएं में पानी नहीं लाता है, अग्नि को ठंडी नहीं करता है, कुछ गड़बड़ नहीं करता है, ये दूसरी उसकी महानता है। यहाँ पानी रख दो तो 100 दफे नमोकार मंत्र बोलो तो ठंडे का ठंडा रहेगा गर्म का गर्म रहेगा, कुछ उसमें गड़बड़ नहीं होती है, इसलिए अग्नि का जल हुआ जल का अग्नि हो जाए तो महामंत्र काय का हो गए सब व्यवस्था भंग करने वाला मंत्र हुआ के फल, इसकी महानता तो इस बात में है। और यदि कोई उसकी कमी है तो इसमें है कि पर का स्मरण है और पर्याय का स्मरण है, इसलिए पुण्य बंध का कारण है, विकारापन नहीं है इसलिए पाप बंध का कारण नहीं है, किसी का भुला नहीं चाहता इसलिए पाप बंध का कारण नहीं है, कुछ 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 में परिवर्तन नहीं करना चाहता है कोई गड़बड़ नहीं करता है इसलिए पाप बंध का कारण नहीं है, महान पुण्य बंध का कारण। और असली भगवान आत्म पर है और पर्याय है, उसके आश्रय से धर्म नहीं होता है, इसलिए ये जो भगवान आत्मा का महामंत्र है इसकी बराबरी वो तीन लोगों तीन काल में नहीं कर सकता, इसलिए हमने सार की तो गाथा गाथा महामंत्र, मुझे तो वो गाथाएं बहुत ज्यादा आती है, अभी से नहीं जब से मैंने समय सार पढ़ा है बंध अधिकार की वे गाथाएं मेरे चित्र में बहुत गहराई से उतरी है। कौन सी देव का करता नहीं चिल्लाते रहो गला सूख जाए कोई सुनने तैयार नहीं, मैं तो ये कहता हूँ कि एक घंटा तक ये 10-12 गाथाएं गात रहा हो तुम पूरा प्रयोजन करो, इससे बढ़िया प्रयोजन दूसरा नहीं हो सकता है। कौन सी मेरे आयु से मरण हो मेरे बाप जिंदर ने कही तू मार कैसे सकेगा, अकाल मौत नहीं होती है कि मेरे आयु से मरण हो यह बाप जिंदर ने कही तू मार कैसे सकेगा जब आयु भर सकता नहीं, मेरे आयु से मरण हो यह बाप जिंदर ने कही बीमार कैसे सकेंगे जब आयु हो सकते नहीं, तो अकाल मौत नहीं होती है, प्रश्न कर मेरे आज से मरण हो के बाद दिन भर में कहीं कोई पागल गया कि नहीं गया, गया क्यों कहेगा। बंदे नीम का झोंका लेते हैं और फिर बिठाते रहते, वही वही बोलते रहते, वही बोलते रहते, भूत भगाने वाले भी बोलते रहते, सांप को बंद करने वाले बोलते रहते, वो चाहे उतरे चाहे नहीं उतरे, चाहे जो कुछ हो कोई कुछ कहता रहे, मंत्र तो वो कोई बोलते रहता है ना, तो वो अकाल मौत संबंधी जितने प्रश्न करता है तुमने सर्वज्ञ की बात बोलते रहो, यही तो उत्तर है। आयु छह से मरण हो और यह बात जनवर ने कही, तुम मार कैसे सकोगे जब आयु हर सकते नहीं, और बीमार कैसे सकेंगे जब आयु देश हर सकते नहीं, बीमार कैसे सकेंगे, तो इसका मतलब है मैं कोई किसी को नहीं बचा सकता। आयु से जीवित रहने में बात दिन भर में कही, तो जीवित रखोगे किस तरह जब आयु दे सकते नहीं, क्यों जीवित रखेंगे किस तरह जब आयु दे सकते नहीं, इसका मतलब है वो बिल्कुल नहीं बचा सकता है। बात दिन भर में कही यानी शांति से आप ये समय सार की गाथाओं को पढ़ते रहो और उपयोग में हमारे वो बात आती रहे, तो इससे बड़ा और स्वाध्याय क्या होगा, क्यों बता बोलो, 15-16-17 गाथाएं हैं, क्यों ऐसी गाथाएं हैं जिसके दो अर्थ कोई नहीं कर सकता, ऐसी गाथाएं हैं जिसे टीका की जरूरत नहीं है, पंडित की जरूरत नहीं है, अब बता तुम बता दो इनको का अर्थ, तो अकाल मौत होती कि नहीं होती है वो कुंद कुंद को पता होगा कि नहीं होगा, बाद में जिनने लिखी समय सार में कि मेरा आयु छह से मरण हो है बाप जिन बनने के लिए, ऐसा नहीं लगे तुम मार कैसे सकोगे जब आयु भर सकते नहीं, कैसे नहीं कर सकते हैं, वो उदीर्ण हो जाएगी और जी हो जाएगी और वो हो जाएगी और कदली घात हो जाएगा मरण हो जाएगा, ऐसा तो वो कुंद कुंद को पता होगा कि नहीं होगा, और मनुष्य गति की बात तो देवों को समझा रहे होंगे, वो नारियों को समझा रहे होंगे, मध्य लोग मध्य आचार्य मनुष्य हैं, मनुष्यों को समझा रहे हैं तो को समझाए, बहुत देव तो उनके भगवान के समझने में आते होंगे, सुनने को आचार्यों के पास तो आते नहीं थे और नारकी तो सुनने आते नहीं थे, जिनकी कदली घात मरण होता है और जिनकी आयु का आकर्षण होता है उनको ये कुंद कुंद समझा रहे हैं कि तुम्हारी कोई आयु नहीं हर सकता और तुम्हारी कोई आयु नहीं दे सकता, तुम किसी की आयु नहीं हर सकते और तुम किसी को आयु नहीं दे सकते, बोलने की जरूरत ही क्या, हमको बोलने की जरूरत क्या है, हम तो उसी लाइन से बोलते जाए ना, उनकी मूल पंक्ति है, हम यही बात अपने मुंह से कहेंगे तो 25 आदमी खड़े हो जाते हैं, नहीं यार कैसे सकता है, नहीं होता है, सबका सूत्र में लगा, फलाने सूत्र में लगा, अब ये भी समय सार में लिखा इतना साफ लिखा, वो अनुपवर्त आयुषा तो अर्थ किसी की समझ में आए चाहे नहीं आए, इतना साफ है, पॉकेट की गाथा उठा लो, महिंसत जामी परे ही सत्य परे ही सत्य हिम सो मूढ़ो अन्नानी नानी ये दूसरी विवरी दी हिंसा हिंसामी जो मन्नति हिंसामी हिंसक जामी परे ही सत्य हिम, बोलो किससे पूछना जाना इसको, जो मन्नति जो मानता है हिंसामी मारता हूँ हिंसक जामी परे ही सत्य हिम अथवा दूसरों के द्वारा मारा जाता हूँ सो मूढ़ो अन्नानी नानी ये दूसरी विवरी दो, बोलो किसे पूछना, बोले जाने क्यों ये महामंत्र है कि नहीं, हमें कोई मार ना दे, ये जो भय माने मरण नामक भय सामने शेर आ रहा हो किरण भाई तो कौन सा मंत्र बोलना चाहिए, नवोकार मंत्र बोलना चाहिए कि ये मंत्र बोलना चाहिए, मैं पूछता हूँ, क्योंकि शेर के खाने से तो ना नवोकार मंत्र से बचने वाले हैं ना इससे, खाना होगा तो नहीं खाना होगा तो दोनों से कुछ नहीं होने वाला है, लेकिन अंदर में जो भय नाम का शेर खा रहा है उससे छुटकारा इस मंत्र से जल्दी होगा, कि ये शेर मेरी देह को खा सकता है आयु कर्म को नहीं खा सकता, और जब तक आयु कर्म नहीं खाएगा देह छूट नहीं सकती, ये भगवान ने कही है बात, बोलो ये मंत्र ज्यादा असर करेगा कि नहीं करेगा, ये नहीं कह रहा हूं कि वो छोटा मंत्र है वो महामंत्र नहीं है, वो तो महा है ही, लेकिन ये महा महामंत्र भक्त का मन क्या तुम कह दो उसको महा को छोटा करो, क्यों ये विचार करो, मंत्र माने होता है एक विचार, मंत्र माने जो विचार जो हमारे हृदय में बराबर असर करे, वो उसे सुनाता था ना कौन, अनंत ध्यान जी ने सुनाया था ना वहां पर मैं अजमेर में, कि वो एक शेर आया था सभा में सब लोग भागने लग गए, उसने घबराओ मत घबराओ मत घबराओ शेर, शेर भाई को बुलाया और तो कान में जाकर एक बात कही तो शेर भाग गया, तो लोगों ने पूछा कि तुमने कौन सा मंत्र पढ़ा था, इससे शेर भाग गया। तो मैंने ये कहा था कि आप बड़ा शांति से अभी आपको बुलाते हैं, 5 मिनट आपको भी बोलना है, तो दौड़ा के भाग गया। मैंने स्टेज पे आना कितना कठिन काम है ये बताना चाहता था। इस अर्थ में शेर भी घबरा के भाग जाएगा, तो ये कहेंगे कितना 5 मिनट बोलना है। तो ये मंत्र उसकी समझ में आया ना कि मुझे बोलना पड़ेगा, तब तो उसका असर हुआ। कि ये मंत्र उसकी समझ में नहीं आता, मैंने एक मंत्र माने विचार, विचार उसके विचार में आया क्या कि मुझे बोलना पड़ेगा, तब तो खड़ा छोड़ के भागा। लेकिन ये विचार ही उसके विचार में नहीं आए तो कैसे क्या बोले। एक लड़का सुबह सुना रहा था बच्चा, वो कहे कि वो क्या कहा गया तुम क्या करना, तुम बोलने लगा कि हाँ भाग जाना, जब आया भाग जाना, तो जब बिल्ली आई तो भाग जाना भाग जाना भाग जाना भाग जाना जो जो भाग जाना भाग जाना भाग जाना भाग जाना बोले। तो मंत्र कहाँ रहा, मंत्र तो उस विचार का नाम है कि बिल्ली आए तो भाग जाना, ये भाग जाना एक विचार है, वो तो शब्द में रह गया ना, विचार में कहाँ गया, मंत्र माने होता विचार, तो विचार में जाना चाहिए ना। हम तो हर मंत्र बोलने के होते हैं, हमारे कोई भी मंत्र विचार के क्रियान्वय के तो होते ही नहीं है, सब मंत्र हमको तो बोल नहीं पड़ते हैं। तो ये भी एक मंत्र है, भाग जाना भाग जाना भाग जाना आराम से, जैसे हाथ पैर जोड़ के बैठ जाके भाग जाना भाग जाना, शेर आए तो भाग जाना, शेर आए तो भाग जाना, शेर आए तो भाग जाना, तुम भाग जाना। और सोचेंगे इसमें बोला मंत्र तो क्या, शेर आए तो भाग जाना, शेर तो भागे नहीं रहा। लेकिन एक शेर भाग जा यही बोलता तू क्या, तो ये रहा है कि शेर आए तो तू भाग जाना, और देख रहा है कि शेर नहीं भाग रहा। माने ये मंत्र माने आयु छह से मरण हो, ये मंत्र विचार, ये महामंत्र, ये विचार महामंत्र है, ये सर्व है विनाशक है क्या नहीं है बोलो। मैं आयु छह के बिना मरण नहीं होगा, आयु के रहने के बिना मैं जीवित नहीं रहूंगा, और दुनिया की कोई ताकत मेरी आयु कम ज्यादा नहीं कर सकती, वो भी होगी तो मेरे परिणामों के निमित्त से होगी, कम ज्यादा जो भी उत्कर्षण उत्कर्षण होगा। ये मंत्र माने पक्का विचार अपने चित्त में आ जाए तो बोलो मरण भय रह सकता है। तो बोलो मंत्र से मरण भय गया कि नहीं गया। लेकिन ये मंत्र मंत्र तो बने, माने विचार की वस्तु तो बने, ये तो जवान की वस्तु बन के रह गई, तो विचार की वस्तु नहीं बनी तो उसका असर कैसे होगा। इसलिए सुनकुन की गाथाएं सब एक एक गाथाएं महामंत्र है, हमको रिपीटेशन से लगता है आगे ईंधन की ईंधन अग्नि की नहीं होगी, आज नहीं होगी कल नहीं होगी क्या है। कहने का मतलब तीन काल अग्नि अग्नि है और ईंधन ईंधन है, ऐसे ही देह देह और आत्मा आत्मा है, कर्म कर्म है और आत्मा आत्मा है, राग राग है और आत्मा आत्मा है, राग आत्मा नहीं होगा आत्मा राग नहीं होगी, कर्म आत्मा नहीं होगा आत्मा कर्म नहीं होगा, शरीर आत्मा नहीं होगा आत्मा शरीर नहीं होगा, आज नहीं होगा कल नहीं होगा, कल नहीं था परसों नहीं था, ऐसे तीन काल की निश्चिंताई करने की ये तेरी बात है। तुम तो त्रिकाल, मैं तो तीन काल ऐसा ही त्रिकाली जो भगवान आत्मा हूँ, और भजन में आता ना तुम त्रिकाल ऐसा ऐसा कुछ आता भजन में, ऐसा तुम तुमको तुम गायक भगवान आत्मा त्रिकाल है, इस बात का निर्णय इस गाथा ने कराया।